शगुन के कॉल आने के बाद अनुभव अपना ड्राफ्ट लेकर गोयनका एम्पायर पहुंचा। नवीन जी ने उसे मीटिंग रूम में बुलाया था। मीटिंग में पूरी बोर्ड टीम थी जो मिलकर फैसला लेने वाली थी। ये अनुभव का पहला प्रेजेंटेशन था जो वो खुद की तरफ से देने वाला था। वहीं अनुभव को देखते ही उनके मैनेजर मिस्टर दत्त हिचकिचाते हुए बोले, सर ये तो आपके सन इन लॉ हैं, अगर आप उनकी कंपनी में फंडिंग करना चाहते हैं तो आपको इन्हें मीटिंग में बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिना हमारी राय के भी इन्हें फंड दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी राय उसी ईमानदारी से रखिएगा जैसे बाकी किसी कंपनी के लिए रखते हैं, नवीन जी ने जवाब दिया। फिर उन्होंने अनुभव की तरफ देखकर कहा, कम मिस्टर मित्तल, आई होप आपने प्रेजेंटेशन अच्छे से तैयार किया होगा, मैं तो कल इम्प्रेस हो गया था, लेकिन जब तक मेरी टीम इम्प्रेस नहीं हो जाती मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अनुभव ने उनकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। उसे ये देखकर अच्छा लग रहा था कि नवीन जी उसके स्टार्टअप में इस वजह से इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो शगुन का हस्बैंड है, वो अपनी टीम के साथ ही फैसला लेना चाहते थे। अनुभव ने आगे जाकर पूरी प्रेजेंटेशन दी और उन सबको प्रोजेक्ट के बारे में बताया। शगुन ने भी उस पर काम किया था और उसमें जो भी कमियां थी उसे पूरा कर दिया था। प्रेजेंटेशन देखने के बाद बाकी सब काफी इम्प्रेस हुए। फिर भी नवीन जी ने खड़े होकर कहा, मैं चाहता हूँ आप ईमानदारी से अपनी राय रखें ताकि इसमें जो भी कमियां हैं उस पर काम किया जा सके। क्या ये कंपनी फंड देने लायक है भी या नहीं ये भी आप ही डिसाइड करेंगे। इस पर अकेले अनुभव ने काम किया है, आगे इसके साथ काम करने के लिए पूरी टीम मौजूद होगी, तो उस बेसिस पर ही आप कोई डिसीजन ले। नवीन जी की बात खत्म करते ही अनुभव तुरंत बोला, नहीं मैंने इस पर अकेले काम नहीं किया है, मैं यहाँ आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि इस पर मेरी वाइफ ने भी काम किया है। अनुभव ने बिना हिचकिचाए ये बात सबको बता दी थी। अनुभव की वाइफ का मतलब वहां सब समझते थे कि शगुन गोयनका ने भी इस पर काम किया है। शगुन उनकी फ्यूचर सीईओ होने वाली थी, इस बात से भी सब वाकिफ थे। कोई भी डिसीजन लेने से पहले नवीन जी के मैनेजर मिस्टर दत्त ने पूछा, क्या शगुन मैम आगे भी इस पर काम करने वाली हैं? एज अ वाइफ वो मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी, लेकिन मैं उस पर किसी तरह बर्डन नहीं डालना चाहता, वो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं रहने वाली है, अनुभव ने सीधे सीधे मना कर दिया। कुछ देर आपस में बातें करने के बाद मिस्टर दत्त ने कहा, आपकी प्रेजेंटेशन और आइडिया काफी अच्छा है मिस्टर मित्तल, पर इसमें अभी भी कुछ कमियां हैं, ये कमियां एक दिन में पूरी नहीं होगी, हम इस पर काम करेंगे तभी पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आएगा, बाकी हम सबकी तरफ से इसे ग्रीन सिग्नल है। उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए बोर्ड मेंबर में मौजूद मिसेस राघवानी ने कहा, प्रोजेक्ट का आइडिया इतना भी यूनिक नहीं है, पहले भी डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट और कंपनी एक साथ आ चुकी हैं, लेकिन इसमें यूनिकनेस ये है कि ये कोई मनी अर्निंग मशीन नहीं बनने वाला है। स्कॉलरशिप का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, ऊपर से आप उन्हीं लोगों को इंटर्नशिप के साथ काम देंगे, उनके कलेक्शन को लॉन्च करेंगे, ये आइडिया मुझे अच्छा लगा। ज्यादातर इंस्टीट्यूट अपने यहाँ से ट्रेंड हुए सिर्फ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को काम पर रखते हैं, लेकिन सबको नहीं, सिर्फ उन्हीं को जिनमें उन्हें कोई स्कोप नजर आता है, लेकिन आप यहाँ सबको प्लेसमेंट देने का कह रहे हैं, आई होप ये काम करेगा। मिस्टर नवीन गोयनका की टीम काफी प्रोफेशनल थी तो वो अपनी तरफ से प्रोजेक्ट की कमियां और खूबियां बता रही थी, जिसे अनुभव काफी पॉजिटिव तरीके से ले रहा था, वो उन्हें नोट भी कर रहा था। सब कुछ नोट करने के बाद अनुभव बोला, जैसा कि आपने कहा इसमें कुछ कमियां हैं तो हम उन पर काम करेंगे, मेरा पहला स्टेप ये होगा कि हम इंस्टीट्यूट की शुरुआत करें और कुछ कलेक्शन लॉन्च करें, कलेक्शन मैं ही डिजाइन करूंगा, हमारी टीम इसमें आपका पूरा साथ देगी, मिस्टर दत्त ने मुस्कुराकर कहा। इसी के साथ मीटिंग खत्म हो चुकी थी। मीटिंग में एक एक करके सब बाहर चले गए थे सिवाय नवीन जी और अनुभव के। उनके जाते ही अनुभव ने नवीन जी से पूछा, आई होप डैड मैंने इसे जस्टिफाई किया हो। उन सबके जाते ही अनुभव थोड़ा नर्वस नजर आ रहा था, तुमने बहुत अच्छे से किया, देखना हमारा नाम साथ में जुड़ेगा तो ये जरूर सक्सेसफुल होगा। मुझे तुम्हारी एक बात अच्छी लगी कि उन सबकी बातों को तुमने अच्छे से सुना और उस पर काम करने का सोचा, वरना आजकल लोग अपनी खामियों नहीं सुनना चाहते हैं, अपनी इस आदत को ऐसे ही रखना, नवीन जी ने मुस्कुराकर कहा। अनुभव ने उनकी बात पर हामी भरी और फिर घड़ी में टाइम देखा, उसे वहां आए हुए लगभग 3 घंटे हो चुके थे। अनुभव ने फिर नवीन जी की तरफ देखकर थोड़ा रिक्वेस्टिंग वे में कहा, अच्छा डैड अगर हम इस प्रोजेक्ट पर थोड़ा रुक कर काम करें तो चलेगा क्या? मुझे सिर्फ 1 महीने का टाइम चाहिए। और वो किस लिए? नवीन जी ने हैरानी से पूछा। शगुन सारा काम अकेले देख रही है तो उसे थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता, मुझे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, बस 1 महीने का टाइम दे दीजिए, मैं इस प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ूंगा, पर ज्यादा टाइम मुझे शगुन को ही देना है, अनुभव ने अपने टाइम मांगने का कारण बता दिया था। नवीन जी को उसे टाइम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने तुरंत उसकी बात पर हामी भर दी थी। उनके हाँ रहते ही अनुभव बोला, ठीक है फिर मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। अरे ऐसे ही क्यों जा रहे हो, लंच टाइम खत्म हो चुका है, तुमने कुछ खाया भी नहीं है, यहाँ से अपने ऑफिस पहुंचोगे तो काफी देर हो जाएगी, नवीन जी ने उसे रोकते हुए कहा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी रचना वहां पहुंची। वो अक्सर अपने काम के बीच में नवीन जी से मिलने आती थी, खासकर लंच ब्रेक में। आज भी रचना लंच ब्रेक में आई थी, लेकिन मीटिंग के बारे में पता चलने पर वो वहीं रुककर वेट करने लगी।